أرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس. اللہ کے نام کو ایسی قسمیں کھانے کے لیے استعمال نہ کرو جن سے مقصود نیکی اور تقوی اور بندگان خدا کی بھلائی کے کاموں سے باز رہنا ہو، کیونکہ واللہ سمیع علیم، اللہ تعالیٰ تمہاری باتوں کو سننے والا اور خوب جاننے والا ہے۔ یہاں سے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ انڈائریکٹلی طلاق کا ٹاپک شروع ہو رہا ہے۔ انڈائریکٹلی کا لفظ میں نے بولا، اس پہ توجہ کیجئے گا کہ اللہ کا نام لے کر نیکی سے نہ رکا کرو۔ بعض لوگوں کی عادت کیا ہوتی ہے کہ کبھی کوئی نیکی کرتے ہیں، پھر اس کا نتیجہ بڑا غلط نکلتا ہے۔ مثلا کسی کا رشتہ کرا دیا اور وہ رشتہ خراب ہو گیا، طلاق ہو گئی، دونوں طرف سے باتیں سننی پڑیں، جھگڑے ہوئے، پھر کہتے ہیں قسم کھاتی ہوں آج کے بعد میں نے کسی کے رشتے میں نہیں آنا۔ یہ مفہوم ہے کہ ایسا نہ کرو۔ لا تجعلوا اللہ عرضۃ، لفظ عرضہ جو ہے یہ عین را دوات سے ہے، عرضہ کہتے ہیں پیش کرنے کو، اسی سے لفظ عرضی بھی ہے، عرضی اپلیکیشن کو کہتے ہیں۔ ایسی جیسے مثال میں بیٹھی ہوئی نا تو ایک دم میں اپنے آگے یہ کر لوں، ڈھال کے معنوں میں آتا ہے یہ، بچانے کے لیے، رکاوٹ، بہانہ نہ بناؤ۔ یعنی اچھے کام سے رکنا تو ویسی بری بات ہے، لیکن بعض لوگ قسم کھا کے اس طرح کی باتیں کہتے ہیں کہ ہم ایسا نہیں کریں گے۔ بعض دفعہ لوگ غصے میں قسم کھا لیتے ہیں، میں نے تو اب قسم کھا لی ہے کہ میں نے کبھی فلاں کے گھر نہیں جانا، فلاں کے تو میں شکل نہیں دیکھوں گی، اور مجھے اللہ کی قسم۔ بعض لوگ قسم کھا لیتے ہیں کہ آج کے بعد میں کبھی کسی کی صلح نہیں کراؤں گا، کسی کی شکل نہیں دیکھوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نام کو مس یوز نہ کرو۔ کہا کیا جا رہا ہے کہ تم تین کاموں کی، آپ دیکھیں اس آیت میں بات ہے، نمبر ایک اچھے کام کرو، نیک کام کرو، ان تبرو، یہ وہی لفظ ہے جو بر میں لئیس البر میں ہم پڑھ چکے، کہ اچھے کام کیا کرو، نیکی کرو، زیادہ کرو، غصے میں آ کے اس قسم کی قسمیں نہ کھا لیا کرو کہ میں یہ نہیں کروں گا، اسے بولوں گا نہیں، یہ نہیں کروں گا۔ دوسری بات، وتتقوا، متقی بنو، اللہ سے ڈرو، تقوا کے کام کیا کرو۔ اور تیسری چیز، وتصلحوا بین الناس، کہ میں لوگوں کے بیچ میں صلح نہیں کراؤں گا۔ واللہ سمیع علیم، اللہ تعالیٰ خوب سننے والا اور جاننے والا ہے۔ صرف سمپل سا مفہوم اس آیت کا یہ ہے کہ اللہ کی قسمیں زیادہ نہ کھایا کرو، اور قسم کھانے نہ، قسم جب تک نہیں کھائی تو اختیار ہے، کھا لی تو پابندی کرنی پڑے گی۔ اب آپ دیکھیے کہ اگر کوئی ایسا کر لے تو کیا کرے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی قسم کھا لے پھر بعد میں اس قسم کو توڑے اور اس کا کفارہ دے دے۔ سورۃ مائدہ کی آیت 89 میں ہم قسم کا کفارے پہ تفصیل سے بات کریں گے، لیکن اگر خدا نخواستہ پچھلی زندگی میں کسی نے کوئی کام ایسا کر لیا تو وہ کیا کرے؟ نمبر ایک ہے کہ وہ کام اب کر لے۔ آپ نے قسم کھائی تھی میں اس کے گھر نہیں جاؤں گی کبھی، اب جائیے، صلہ رحمی کیجئے، وہ آپ کے اپنے ہی ہیں، ہاں آپ چلے گئے، کریں کیا؟ یا تو آپ 10 مسکینوں کو کھانا کھلا دیں، یا 3 روزے رکھ لیں، یا پھر ایک غلام کو آزاد کریں۔ یہ سورۃ مائدہ کی آیت 89 میں آپ کو ڈیٹیل اس کی مزید مل سکتی ہے۔ تو قسم کی بات کر کے اب ایک بہت بڑی قسم کی طرف ہمیں لایا جا رہا ہے، آیت 224 سے 225 میں، لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، جو بے معنی قسمیں تم بلا ارادہ کھا لیا کرتے ہو اللہ ان پر گرفت نہیں کرتا۔ عربوں کی عادت کیا ہے، آج بھی ہے، کہ بات بات پہ قسم کھاتے ہیں۔ مثلا کیا کہتے ہیں، کبھی سنا ہے آپ نے؟ واللہ، واللہ، باللہ، تاللہ، یہ ان کی عادت ہے۔ جیسے ہمارے ہاں عموماً کچھ لفظ بولتے ہیں نا عادت کے طور پہ، تو عرب لوگ اس طرح کی باتیں بول دیتے تھے غیر ارادی، کچھ پتہ نہیں، کچھ سوچا نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر اب عادت ہو چکی ہے تو پھر کوئی بات نہیں۔ تو کیا پتہ چلا کہ بل لغو باتیں جو ہوتی ہیں، بیکار، بے مقصد، جس کے اندر کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے، سوچا ہی نہیں، ایسے تکیہ کلام کے طور پہ منہ سے نکل گئی، کوئی بندہ ایک لفظ بول رہا ہے، کوئی دوسرا بولتا ہے، تو پھر اس کو اللہ تعالیٰ تمہیں نہیں پکڑے گا۔ یہاں دیکھیے کہ یہ بھی ایک سامع بر کی ایک قسم ہے کہ جھوٹی قسمیں نہ کھاؤ، عہد کی پابندی کرو، وعدوں کی پابندی کرو، پھر کیا اللہ پکڑے گا؟ ولاکی یؤاخذکم بما کسبت قلوبکم، اللہ وہ پکڑے گا جو تمہارے دل کے ارادے سے تم کھاتے ہو۔ اشارہ ہے اصل میں اس پوری آیت میں طلاق کی طرف، कि तलाक अगर किसी ने इरादे से दी है, सोच समझ के दी है, बोल के दी है, या उसके लिए कहा है, लफ्ज़ क्या इस्तेमाल किए, वो कब होगी? जो तुम बीमा का सबत कुलूबुकुम, किसी के कहने पे नहीं, मजबूर करने पे नहीं, बाय फोर्स नहीं, बल्कि तुमने इसलिए दिया कि तुम जानते हो, ऐसी कस्मों पे अल्लाह तुम्हें फिर ज़रूर पकड़ेगा। वल्लाहु गफूरुन हलीम, और अल्लाह बख्शने वाला और तहम्मुल वाला। एकदम कसम की बात आ गई, ज़ाहर लगता है कि बात बनती नहीं है, लेकिन असल में अल्लाह ताला कसम की यहाँ डिटेल नहीं दे रहा, इसीलिए मैं भी इसको जल्दी से गुजार रही हूँ, क्योंकि इस पर हम बात करेंगे सूरह मायदा में, ये बात वहाँ आएगी। अल्लाह ताला एक बड़ी कसम की तरफ हमारी तवज्जो दिला रहे हैं, उसके लिए यहाँ जहन साजी की जा रही है। और कसम के अमूमन तीन किस्में होती हैं। नंबर एक, लग्व कसम, बग़ैर किसी के बोली जिसका या इशारा, ये मुआफ़ है, इस पे ना कफ़ारा है ना पकड़ है, आदतन हुई, वैसे पसंदीदा नहीं है, झूठा शख्स ज़्यादा कस्में खाता है, तो कसम से ये नहीं कहना चाहिए। दूसरी कसम है इरादतन, इरादे से जो खाते हैं, ये इसके ऊपर क्या कफ़ारा। तीसरी किस्म होती है झूठी कसम, ऐसे ही पता है कि ये काम नहीं किया फिर भी कसम खा ली। फरमाया जो झूठी कसम खा के माल बेचेगा उसमें अल्लाह ताला बरकत नहीं देगा, तो इसके ऊपर कोई कफ़ारा नहीं, बल्कि ये कबीरा गुनाहों में से है। हमारे मुल्क में तो शायद इसको कबीरा क्या सगीरा भी नहीं समझते। अब कसम की एक ख़ास किस्म, ईला जिसको बोलते हैं, उसकी तरफ इशारा, आयत को हम देख लेते हैं, तो फिर इंशाअल्लाह ताला इसको फिर अगली आयत के साथ मिला के देखेंगे। अभी तक जो बात हम देख चुके हैं, अगर उसको हम चंद लफ्ज़ों में दोबारा देख लें, कि अल्लाह ताला ने निकाह को एक बामकसद ताल्लुक़ बनाया है, और इस ताल्लुक़ के अंदर औरत और मर्द दोनों के हकूक़ को रखा जाएगा बराबर। और ख़ास तौर पे जो आयत निसाउकुम खर्सुल्लकुम हमने देखी, उसके अंदर मर्द को उसकी ज़िम्मेदारियों का एहसास दिलाया गया कि तुम्हारा मकसद सिर्फ औरत से फ़ायदा उठाना नहीं, बल्कि जिस तरह एक किसान अपनी खेती में अपनी खेती की हिफाजत करता है, उसकी ज़िम्मेदारियों को निभाता है, तुमने भी इसी तरह से इस औरत के साथ अपना मामला रखना है। इसके बरक्स जो दूसरे कल्चर हैं, वो औरत को कभी फूल और कभी तितली और कभी चांद बना के दिखाते हैं, कि जिससे हर एक फ़ायदा उठा सकता है, किसी का कुछ उस पर लगता नहीं है, तो औरत मर्द के लिए एक बहुत कीमती चीज़ है। इसके अंदर एक पॉइंट छूट गया था, अगर हम वो भी इसमें ऐड करना चाहें, जो हम तकाबुल कर रहे थे, और ये बात है इंशाल्लाह फिर, कि एक चीज़ और जो हम देख सकते हैं कि किसान और खेती का ताल्लुक है, वो क्या है कि किसान कभी भी किसी ज़मीन में जब बीज डालता है तो एकदम बीज नहीं डाल देता, पहले ज़मीन को नरम करता है, फिर उसकी गुडाई करके और उसके अंदर कुछ हल चला कर, फिर वो उसके अंदर बीज डालता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वाज़े अहादीस से ये चीज़ साबित है। हालांकि ये बहुत पर्सनल चीज़ें होती हैं, लेकिन इनको पढ़ते वक्त दिल में वाकई तशक्कुर के जज्बात होने चाहिए कि अल्लाह ताला ने हमें इतना प्यारा नबी दिया, जो एक रहबर भी थे, एक उस्ताद भी थे, और हमें ज़िंदगी गुजारने की बहुत सारी चीज़ों को उन्होंने इस तरह से सिखाया कि अब हम सिर्फ अगर पढ़ते जाएँ, सीखते जाएँ, तो अमल कर सकते हैं। तो आपने फरमाया कि कोई शौहर जब भी अपनी बीवी के पास आए, तो उसको एकदम उसके पास ना आए, बल्कि उसको पहले उससे प्यार की बात करे, मोहब्बत की बात करे, दिलसोजी करे, यानी हर हाल में। मुझे तो ऐसे लगता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हमदर्दियाँ थी वो बीवियों के साथ ज़्यादा थी और मर्दों की निस्बत, लेकिन कितने अफसोस की बात है कि आज उसी नबी को हम एक ऐसा किरदार बना के पेश करते हैं कि शायद आप बहुत सख्त दिल थे। तो बहरहाल किस्सा मुख्तसर ये कि औरत और मर्द का ताल्लुक एक बहुत ही बामकसद ताल्लुक होता है, लेकिन याद रखिए कि निकाह एक कानूनी रिश्ता होने के साथ साथ एक कल्बी रिश्ता भी है, इसमें दिल जुड़ते हैं, दिल होते हैं। आप बाज़ार से एक चीज़ लेकर आते हैं, आपको कोई गिफ्ट में कोई दे देता है, आपको नहीं भी पसंद होती, आप कहते हैं रख लो, गुजारा कर लो, इस्तेमाल कर लो। निकाह में अमूमन ऐसा नहीं हो पाता, दिल के मामलात जब होते हैं, और दिल बदलता भी है, बाज़ औक़ात अच्छे हालात होते हैं तो उसके बाद थोड़े से हालात में ख़राबी भी आती है। तो अब यहाँ से आगे तक का जो हिस्सा है जिसमें ये मामलात हम पढ़ेंगे, ये निकाह के टूटने की मुख्तलिफ़ किस्में हैं। आप यहाँ ये एक जुमला लिख लें कि यहाँ से आगे अब मुख्तलिफ़ तरीक़ों से निकाह टूटता हुआ दिखेगा। और याद रखिए कि इस्लाम से पहले जितने भी अदियान थे, उनके अंदर शादी अगर एक दफ़ा हो गई तो फिर ख़त्म नहीं हो सकती। इवन एक ऐसा दौर गुज़रा कि कुछ लोगों ने क्रिश्चियनिटी के नाम पर भी इस चीज़ को रखा। आज भी अगर आप देखें तो हिंदुइज़्म में शादी को अटूट रिश्ता कहते हैं, ये अटूट रिश्ता है, टूटता है, हर बर्तन टूट जाता है ना, इस तरह निकाह हुए वे भी टूट सकते हैं। इस्लाम ने इसको ऐसे गले की फांस नहीं बना दिया, बल्कि आप सोचिए कि किसी औरत की शादी हुई, मर्द शराबी है, पहले नहीं तहकीक की या पहले रिसर्च नहीं की, हो सकता है कि वो चरस पीता हो, मारता हो, जाहिल हो, तो क्या वो औरत उसके साथ ही रहेगी? तो लिहाजा यहाँ ये समझ लीजिए कि जिस तरह निकाह इस्लाम ने सिखाई, निकाह का हुक्म इस्लाम ने दिया है, उसका तरीका सिखाया है, इसी तरह अगर एडवर्स कंडीशंस में निकाह कायम ना रहे तो उस निकाह की गिरा को खोलने का तरीका भी इस्लाम ने सिखाया है। और वही बात कि तलाक जो है ये आम हालात में इस्तेमाल करने वाली चीज़ नहीं, ये इमरजेंसी डोर है। किसी भी बिल्डिंग में जब कोई इमरजेंसी डोर होता है तो वो हर वक्त नहीं इस्तेमाल किया जाता, तो लिहाजा वो मर्द भी बहुत जाहिल हैं जो छोटी छोटी बात पे औरतों को धमकियां देते हैं कि तुम्हें तलाक दे दूंगा, तुम घर से निकली तो तुम्हें तलाक, तुम्हारी माँ आई तो तलाक, बेटी हो गई तो तलाक दे दूंगा। ये भी एक किस्म की बहुत ही जहालत है। और ना ये कहना कि भाई बस अब जो भी है जियो मरो, अब तुम इसके पल्ले पड़ गई हो लिहाजा अब तुम्हें इधर ही रहना है। इस्लाम बहुत ही मुख्तलिफ तरीके से लोगों को मामला को सॉल्व करना सिखाता है। इसमें से अब पहली चीज़ हम पढ़ेंगे, ये है ईला। ईला का लफ्ज़ है, लफ्ज़ लिल्लज़ीना यूलूना में। पहले आयत का तर्जमा देखते हैं, फिर इंशाल्लाह इसमें से कुछ चीज़ें देखेंगे। फरमाया, लिल्लज़ीना यूलूना मिन निसाइहिम तरब्बुसु अरबाअति अशहुरिन, जो लोग अपनी औरतों से ताल्लुक़ कायम न रखने की कसम खा बैठते हैं, इनके लिए 4 महीने की मोहलत है, यानी 4 माह से ज़्यादा इनको अब वक्त नहीं दिया जा सकता। इसके बाद क्या होगा? फ़ैन फ़ाऊ, फिर अगर वो पलट आए यानी रुजू कर लें, इशारा है इधर फिर ताल्लुक़ कायम करने पे, कि अब वो ताल्लुक़ कायम कर लें, फ़इन्ना अल्लाह गफूरुर रहीम, तो बेशक अल्लाह ताला बख्शने वाला और मेहरबान है। यानी इतनी देर जो इन्होंने अपनी बीवियों को उनका हक ना दिया, तो अब उम्मीद है कि अल्लाह ताला इनके इस गुनाह को माफ़ कर देगा। लेकिन अगर ये भी ना हो, 4 महीने गुजर गए, अब इसके बाद दोबारा ना मर्द उस औरत से रजू करता है और ना उसको तलाक देता है, तो अब क्या है अगला मरहला? आयत 22-27, वइन अज़मुत तलाक, और अगर वो इरादा कर लें, पुख्ता इरादा ही कर लें तलाक का, यानी अब उन्होंने ठान ही ली है कि तलाक ही देनी है, तो कोई बात नहीं, फ़इन्ना अल्लाह समीउन अलीम, बेशक अल्लाह ताला खूब सुनने वाला और जानने वाला है। इन दो आयात में ईला के मसाइल हैं। ईला किसको कहते हैं? किसी मर्द का अल्लाह की कसम खाकर ये कहना कि मैं अपनी बीवी के साथ ताल्लुक कायम नहीं रखूंगा, इस कैफियत को ईला कहते हैं। यानी आप ईला में अलहदगी का लफ्ज़ ज़हन में ले लें, इसकी साउंड से समझ लीजिए, कसम खाना लाजमी होता है और डिक्लेयर करना, या यानी अपने रवैये से भी यही चीज़ दिखाना और बता देना कि मैं अपनी बीवी के साथ ताल्लुक़ कायम नहीं करूँगा, इसको इस्लाम में ईला कहते हैं। यहाँ इन आयात में इसकी हद जो बताई है वो 4 महीने है। 4 माह तक एक शौहर आज़ाद है, ठीक है, नहीं दिल मानता उसका, 4 महीने तक चुप कर जाए, ना बोले, ना बात करे, ना ताल्लुक़ कायम रखे, लेकिन जो ही 4 माह गुजर जाएंगे उसके बाद फिर वो अब पाबंद होगा। 4 ही माह क्यों है, इसके बारे में एक वाक्या आपके सामने रखूंगी। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हो ने अपने दौरे खिलाफत में रात को गश्त के दौरान, यानी वो वॉक अराउंड करते थे, टूर करते थे कि देखें कि कहीं किसी पे कोई जुल्म तो नहीं हो रहा, कोई किसी को सता तो नहीं रहा, तो एक रात जब रात गश्त कर रहे थे तो एक घर के अंदर से आवाज़ सुनी। एक औरत थी तो वो कुछ गुनगुना रही थी, जिसका मफहूम ये था कि वह अपने शौहर को मिस कर रही है। पता चला कि ये औरत कौन, पूछा गया कि ये कौन औरत है, अगले दिन जब रिसर्च तहकीक करवाई, पता चला कि इसका शौहर जो है वो जिहाद के लिए सरहद पे गया हुआ है और उसको काफ़ी अरसा गुजर गया। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने अपनी बेटी हज़रत हफ्सा रज़ी अल्लाह अन्हा को बुलाया, जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा मुहतरमा भी थी, और कहने लगे कि ये बताओ कि औरत अपने शौहर से कितनी देर दूर रह सकती है। यानी इशारा उनका यही था कि कब उसको उसकी भी ज़रूरत महसूस होती है, क्योंकि मर्दों का तो मामला फ़र्क है, लेकिन औरतों को भी अगर पूछा जाए तो उनकी क्या है। तो हज़रत हफ्सा ने बताया कि 4 महीने की मुद्दत जो होती है, इसके बाद एक औरत महसूस करती है, اگلے ہی دن حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ قانون منظور کروایا کہ آج کے بعد کوئی شادی شدہ مجاہد سرحد پر 4 مہینے سے زیادہ نہیں رہے گا، اس کے بعد اس کو آنا پڑے گا۔ تو آپ دیکھیے کہ اللہ کی ذات انسانی فطرت کا کتنا لحاظ رکھتی ہے۔ کیا یہ ویمن رائٹس نہیں؟ اللہ تعالیٰ عورت کو وہ حق بھی دلوا رہا ہے جو عورت شرم کے مارے کسی دوسرے سے کہہ ہی نہیں سکتی۔ تو لہٰذا ایلا کے کچھ مسائل آپ کے سامنے پوائنٹس کی صورت میں رکھ دیتی ہوں۔ پہلی بات ہے کہ اگر کسی ایسے حالات میں کوئی شوہر ایلا کرتا ہے کہ جہاں وہ بیوی کو ادب سکھانا چاہتا ہے، اس کو تادیب کہتے ہیں، تادیباً، ایک لفظ ہوتا ہے تعذیباً، عذاب سے، وہ تعذیباً ہوتا ہے سزا دینا، تادیب کیا ہوتی ہے ادب سکھانا۔ مثال دیتی ہوں کہ جیسے آپ یہاں آتے ہیں، آپ اتنے پیارے بچے ہیں، پھر بھی کبھی کبھی آپ کو ہم ڈانٹ دیتے ہیں، کبھی ہم کسی بات پہ آپ کی بات نہیں مانتے، تو مقصد کیا ہوتا ہے کہ آپ کو ادب سکھایا جائے، جیسے آپ بچوں کے ساتھ بھی کرتے ہوں گے اپنے۔ تو لہٰذا تادیباً شوہر اپنی بیوی سے ایلا کر سکتا ہے، یہ جائز ہے۔ پہلی بات اس کے بارے میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک موقع پر اپنی بیویوں سے 1 مہینے کا ایلا کیا تھا۔ جب آپ کی بیویوں نے دوسری عورتوں کی دیکھا دیکھی یہ مطالبہ کر دیا کہ اب ہمیں بھی ذرا خرچ پانی زیادہ دیا جائے تاکہ ہم بھی آسودہ رہیں، تو اللہ کے نبی نے ان کو ان کے مقام اور مرتبے کا خیال کروانے کے لیے کہا کہ اب 1 مہینے تک میں تمہارے ساتھ نہیں بات کروں گا، اور آپ اپنے گھر ہی میں اوپر حجرے میں چلے گئے تھے، اور جب 29 دن پورے ہوئے تو آپ نیچے آنے لگے۔ تو لوگوں نے آپ کو یاد دلایا کہ اللہ کے نبی ابھی تو آج تو 29 دن ہوئے، آپ نے تو 1 مہینے کی بات کی تھی، کیونکہ ان کو ڈر یہ تھا کہ اب ایلا قسم کھا دی ہے نا، اس کا قسم توڑنے کا پھر کفارہ دینا پڑتا ہے۔ تو کہا اللہ کے نبی آج تو صرف 29 تاریخ ہوئی ہے، تو آپ نے کہا کہ کیا کبھی چاند 29 کا نہیں ہوتا، یعنی مہینہ 29 کا نہیں ہوتا۔ یہاں سے آپ کو اللہ کے نبی کا کردار بھی سمجھ آنا چاہیے کہ آپ ہمیشہ دو چیزوں میں، ایک مشکل چیز ہوتی ہے، ایک آسان ہوتی تو آپ آسانی کا راستہ لیتے۔ حدیث ہے کہ اللہ کے نبی دو میں سے ایک چیز اختیار کرنی ہوتی تو آسان کرتے۔ آج تجرد کے نام پہ، رہبانیت کے نام پہ، چلا کشی کے نام پہ، اپنے آپ کو مشکلات میں ڈالنے کے نام پہ لوگ مشکل چیز کو دین سمجھتے ہیں۔ میں دھوپ میں چلوں گا نا تو زیادہ ثواب ہوگا، کوئی ثواب نہیں ہوگا، آپ کے سر میں درد ہوگی، چھاؤں میں چلیے۔ تو لہٰذا آپ نے 29 دن کا ایلا کیا، اور اس کے بعد آپ اپنی بیویوں کے پاس آئے، اللہ تعالیٰ نے اس چیز کی اجازت دی ہے، اور اس کے بعد واقعی پھر آپ کی بیویوں نے دوبارہ کبھی بھی اس قسم کی بات نہیں کی۔ اگلا مسئلہ اس کے بارے میں یہ ہے کہ کوئی 4 ماہ سے کم کا کرنا چاہے تو کر لے، جیسے اللہ کے نبی نے کہا 1 ماہ۔ کوئی شوہر بیوی سے کہہ سکتا ہے میں 3 دن تک تم سے بات نہیں کروں گا، یا میں تم سے تعلق قائم نہیں رکھوں گا، 1 ہفتہ نہیں، کوئی حرج کی بات نہیں، اس طرح کیا جاتا ہے۔ لیکن ایلا کی حد 4 مہینے ہے، کوئی شوہر 4 ماہ سے زیادہ اپنی بیوی سے اس نیت سے الگ نہیں رہ سکتا۔ عام حالات ہوتے ہیں زندگی میں، گرمی سردی ہے، بعض دفعہ شوہر دوسرے ملکوں میں ہیں، بیویاں ادھر ہیں، حالات ایک اور طرح کی بات ہے، لیکن اس سوچ، اس نیت، اس ٹارچر کے ساتھ کوئی شوہر 4 ماہ کس سے زیادہ نہیں رہ سکتا۔ 4 ماہ اگر گزر جائیں، شوہر نہ پھر بھی اس کے بعد بیوی سے تعلق قائم کرے، اب یہ معاملہ عدالت تک جائے گا، قاضی وقت کے پاس جائے گا، پھر وہ اس مرد کو مجبور کرے گا، یا تو تم اس کے ساتھ تعلق رکھو یا اس کو طلاق دے دو۔ خود بخود طلاق نہیں ہوتی، لیکن اگر مرد نہیں دیتا تو پھر گورنمنٹ سے عورت جو ہے وہ بیچ میں اس کو مداخلت کے بعد اس کو طلاق اسے لے لیتی ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہی بات جہاں بتا دی کہ تم اس طریقے سے عورتوں کے ساتھ اگر قبیلہ کرتے ہو تو یاد رکھو کہ تم اس میں اپنے آپ کو اس طرح گناہ گار نہ کرو، پلٹاؤ۔ دیکھیے کہ دور جاہلیت میں کیا، آج بھی ایسے کئی لوگ ہیں جو کئی کئی سال سے بیویاں اور شوہر ساتھ رہ رہے ہیں، لیکن وہ نہ بیوی بیوی ہے نہ شوہر شوہر ہے، ایک آنکھ سے روتی ہے، ایک سے ہنستی ہیں، خون کے گھون پڑتی ہیں کئی ایسی لڑکیاں کہ جن کو شادیاں کر کے لے آیا جاتا ہے، اور کئی کئی مہینے کیا سال گزر جاتے ہیں اور مرد ان کی طرف دیکھتے بھی نہیں ہیں۔ یہ ظلم کی حد ہے، کوئی مرد اس طرح کا معاملہ نہیں کر سکتا۔ ہاں، ایلا کے بعد طلاق دلائی جائے گی، پھر عورت اس طلاق کی عدت پوری کرے گی، اور اس کے بعد جب جہاں چاہے وہ شادی کر سکتی ہے۔ اور یہ بہت ہی خوبصورت چیز اللہ تعالیٰ نے یہاں جو بتا دی ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے حقوق کو پروٹیکٹ کیا ہے۔ اب اس کے علاوہ اگر کوئی کہ کوئی شوہر کہتا ہے اچھا میں تم سے بولتا نہیں ہوں، میں تم سے ناراض ہوں، تو کیا یہ بھی ایلا؟ نہیں، یہ ایلا نہیں ہے، یہ ایک عام حالات کی بات ہوتی ہے۔ اب اس کے بعد یہاں سے ہی بات کو تھوڑے سے مزید اگلے رخ پہ ڈالا گیا، اور وہ کیا ہے؟ طلاق۔ آیت نمبر 28 کو دیکھتے ہیں۔ یہاں پہلی دفعہ آپ دیکھیں گے کہ طلاق की इद्दत का बेसिकली तस्करा है। असल में तलाक का टॉपिक अगली आयतों में आएगा 229 पे। तो यहाँ हम तलाक के तरीके पे बात तो नहीं करेंगे, लेकिन हम उसके कुछ आफ्टर इफेक्ट्स जो हैं उस पे बात करेंगे। चंद बातें थोड़ी सी ईला के बारे में, वो भी नोट कर लीजिए कि ईला के नतीजे में जब औरत को तलाक होगी तो फिर 3 हैज तक उसकी इद्दत होगी, जैसे कि आम होती है, ठीक है। फिर उसके बाद ये है कि अगर मर्द कसम खाए बग़ैर ताल्लुक नहीं रखता तो फिर ईला वो नहीं होगा। फिर एक और है कि अगर मर्द ने कहा कि मैं तुम्हारे पास 3 महीने तक नहीं आऊँगा, लेकिन उससे पहले ही आ जाए, तो क्या होगा? आएगा, लेकिन 7 कसम का कफ़ारा देगा, जो हम पीछे भी पढ़ चुके और आगे भी पढ़ेंगे। तो लिहाजा पसंदीदा बात यह है कि अगर वाकई इंसान समझता है कि ऐसा हो जाए तो ठीक है, और अगर मर्द ना तलाक देना चाहे ना ताल्लुक़ कायम करे तो फिर उसको कैद किया जाएगा और गवर्नमेंट उसके अंदर मुदाखलत करेगी। तो चलिए अब देखते हैं आयत नंबर 228 को। फरमाया वल मुतल्लक़ातु यतरब्बसना बिअन्फुसिहिन्न सलासता क़ुरू। जिन औरतों को तलाक दी गई हो वो 3 मर्तबा अय्याम माहवारी आने तक अपने आप को रोके रखें। मुतल्लकात, मुतल्लकतुन की जमा है, तलाक याफ्ता औरत को कहते हैं, यानी डिवोर्स्ड वुमेन। या तो रब्बस ना का लफ्ज़ रबिसा से है, रा बा स्वाद इसका रूट है। बियनफुसी हिन्न अपने आप को, नून फासीन नफ्स से। सलासता 3, क़ुरू हैज। क़ुरू का लफ्ज़ अरबी ज़ुबान में हैज़ के लिए भी इस्तेमाल होता है, यानी वो दिन जब औरत को पीरियड्स आए हों। और इसी तरह ये तोहर के लिए भी आता है। आप में से कोई बताए तोहर क्या था? पिछले सबक में बात हुई तोहर किसको कहते हैं, 2 पीरियड्स के बीच की कैफियत जो पाक है। तो सलासता क़ुरू को कुछ लोगों ने कहा कि 1 पीरियड से दूसरे पीरियड तक वक्त मुराद है, और दूसरे उन्होंने कहा कि नहीं, 1 पीरियड के ख़त्म होने से दूसरे पीरियड के शुरू होने तक का वक्त। और दोनों में सिर्फ फ़र्क 2-4 थोड़े से दिनों का ही है। कुछ कहते हैं कि इद्दत जो है वो रुक ख़त्म हो जाती है पीरियड शुरू होते ही, आप ये लगा लें। यानी इस क़ुरू का एक मानी लें तो इससे मफहूम क्या है? कुछ स्कॉलर्स कहते हैं कि जो ही औरत के पीरियड शुरू हुए उस दिन इद्दत ख़त्म हो जाएगी। दूसरे कहते हैं कि नहीं, पीरियड्स के दिन भी गुजर जाएंगे और वो नहा के पाकी के दिन में आएगी तो वो कैफियत होगी। ये क्या है? तलाक याफ्ता औरत की इद्दत। कौन सी तलाक याफ्ता औरत? जिसको पीरियड्स आते हैं, यानी मिडल एज की औरतें। ना वो बहुत छोटी हो बच्ची, जिसको अभी तलाक, जिसको अभी ये पीरियड शुरू नहीं हुए, बाज़ हालात में ऐसा भी होता है, नाबालिग बच्चियों को भी तलाक हो सकती है, होने के चांसेस होते हैं। और बाज़ दफ़ा बड़ी उम्र की औरतें मीनोपॉज से जो गुजर चुकी होती हैं 40 प्लस, जिसको याइसा कहते हैं, यानी अब नाउमीद है कि उसके उसको पीरियड्स आएंगे या बच्चा पैदा होगा। तो लिहाजा 3 महीने आप अपने अंदाजे के लिए ले लें कि तलाक याफ्ता औरतें 3 महीने तक खुद को रोके रखें। किस चीज़ से रोके रखना है? नंबर 1, दूसरा निकाह नहीं करना। यानी ये अब यहाँ हल्के हल्के नोट्स ले लें, फिर इंशाल्लाह ये मौजू आगे आएगा। मैं चाहती थी कि आयत आपको हल्की सी समझ आ जाए। यानी अगला निकाह करने से रोके रखे, ठीक है, बस इसमें इतना ही है। फिर के वला यहिल्लु लहुन्ना अन यक्तुमना मा खलक़ल्लाहु फी अरहामिहिन इन कुन्ना युमिन्ना बिल्लाहि वल यौमिल आखिर। और इनके लिए ये जायज़ नहीं कि अल्लाह ने इनके रहम में जो कुछ पैदा फरमाया हो, यानी बच्चा प्रेग्नेंट है अगर वो औरत तो, उसे छुपाएं। यानी औरत दूसरी चीज़ के इद्दत के मामले में कि औरत अपनी प्रेगनेंसी नहीं छुपाएगी। अगर किसी औरत को पता चल जाए कि मैं प्रेग्नेंट हूँ तो उसकी इद्दत 3 महीने से बढ़कर या कम होकर दोनों सूरतों में डिलीवरी हो जाएगी। वज़ह हमल, सूरत तलाक में ये मसला आता है और हम वहाँ जाके भी पढ़ेंगे कि आम हालात में औरत की इद्दत 3 महीने होती है। कौन सी इद्दत की हम बात कर रहे हैं इस वक्त? तलाक की इद्दत। और दूसरी बात यह है कि हम उस औरत की पढ़ रहे हैं कि जिसके जो प्रेग्नेंट नहीं है, इद्दत के दौरान ही पता चल जाता है कि मैं तो प्रेग्नेंट हूँ, तो फिर उसको पूरे 9 माह गुजारने पड़ेंगे एक सूरत में। और दूसरी सूरत है कि वो पहले से ही प्रेग्नेंट थी और शौहर ने तलाक दे दी, जो कि बहुत ही बुरी बात है और गुनाह की बात है। तो उस सूरत में हो सकता है कि 2 दिन बाद बच्चा पैदा हो जाए, हो सकता है औरत पूरे दिनों की तैयार थी और मर्द को किसी बात पे गुस्सा आया, तलाक दी, तो जूँ ही बच्चा पैदा होगा, चाहे 1 दिन बाद, चंद घंटे बाद हो, उस औरत का जो वेटिंग पीरियड है वो ख़त्म हो जाएगा। फिर अगली चीज़, ये बात किस चीज़ से जोड़ दी? अगर अल्लाह पर और आखरत पर ईमान है, क्योंकि ऐसी चीज़ें सब्र चाहती हैं। बाज़ दफ़ा अगर किसी को 5-6 महीने तक अगले निकाह से ख़ुद को रोकना पड़ता है या अपने आप को अलग करना पड़ता है तो हकीकत में मुश्किल होता है। तो कहा फिर इसका अजर तुम्हें अल्लाह ताला से मिलेगा। फिर उसके बाद वबूलतुहुन्ना अहक्कु बिरद्दिहिन्ना फ़ी ज़ालिका, और उन्हीं के शौहर ज़्यादा हकदार है उनको लौटा लेने के। फ़ी ज़ालिका के नीचे लिखी है अपने पारों पर। ये जो वज़ाहती तफसीर होती है ना, ये आपको पारे पर लिखनी चाहिए, फिर आप इंशाल्लाह उसका मफहूम कभी भी नहीं भूलेंगे। अल्लाह ताला कहते हैं कि इस इद्दत के दौरान फ़ी ज़ालिका को नीचे लिखिए, इद्दत जो गुज़र रही है, जो वेटिंग पीरियड औरत का गुज़र रहा है, कि इन 3 महीनों के दौरान उनके शौहर ज़्यादा हकदार हैं कि उनको लौटा लें। इशारा क्या है? अभी आप जब अगले सबक में तलाक का प्रोसेस सुनेंगे, पूरा प्रोसीजर, तो फिर आप इस बात को बहुत ही अच्छी तरह समझेंगे कि ये कैसे हो गया कि तलाक के बावजूद भी औरत उसी घर में रही है। और यहाँ देखिएगा कि बुउलतुहुन्ना कहा गया किसको? जो मर्द अपनी बीवी को तलाक दे चुका है। क्या पता चला कि सिर्फ शौहर के कह देने से कि मैं तुम्हें तलाक देता हूँ, तलाक नहीं होती, उसका एक प्रोसेस होता है। और उस दौरान वो बीवी उसके साथ ही रहेगी अगर शौहर का दिल चाहता है, किसी भी वक्त में 3 माह के अंदर अंदर या वजह हमल से पहले पहले। तो इस दौरान अगर शौहर चाहता है कि नो आई मैं रजू करता हूँ, मैं सॉरी कहता हूँ, मुझे माफ़ कर दो, वट्स एवर जो मर्ज़ी कहना चाहे, तो ये ज़्यादा पसंदीदा बात है। शर्त एक ही है, शौहर क्यों रजू करे? इन अरादू इस्लाहन, कि वो अब इस्लाह के लिए इरादा कर चुके हैं, सुलह करना चाहते हैं। ये नहीं कि मर्द अब और तकलीफ़ देने के लिए कहता है नहीं अब रुजू करता हूँ एक दफ़ा फिर तुम्हें दोबारा तलाक दे दूँगा, ऐसा नहीं है। बल्कि इस्लाह की नीयत से पता चल गया कि हम अलग नहीं रह सकते, गलती थी, ऐसे ही मैं जोश में आ गया, अब तो लगता है कि ये चीज़ हाथ से चली जाएगी। और इंसान की फितरत है, जो चीज़ उसके पास होती है उसको उसकी कदर नहीं होती। जो ही उसको पता चलता है कि ये चीज़ अब मेरे पास नहीं रहेगी, तो फौरन उसका दिमाग जो है वो खुलने लगता है। तो कहा कि अगर इस 3 महीने या इस वेटिंग पीरियड के दौरान शौहर ज़्यादा, यानी शौहर रुजू करना चाहे तो बहुत अच्छा है, किसी और जगह शादी करने के बजाय। हक़ का लफ्ज़ ये कि ज़्यादा हकदार, अब किससे ज़्यादा हक है, यानी इद्दत के बाद किसी और जगह जो शादी करनी है तो इसी जगह करना ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि बच्चे होते हैं साथ बाज़ दफ़ा। फिर एक औरत के एक मर्द के साथ जब राजदारी ख़त्म हुई, खुल गई बात, तो फिर दोबारा दूसरे मर्द के साथ भी तो कई मसले आएंगे, तो बेहतर है कि इसी के साथ कंपनसेशन हो जाए। अच्छा, वलहुन्न मिस्लुल्लज़ी अलैहिन्न बिलमारूफ, और फरमाया कि औरतों के लिए भी मारूफ तरीके पर वैसे ही हकूक़ हैं जैसे कि मर्दों के हकूक़ इन पर हैं, लेकिन वलिर्रिजाली अलैहिन्न दरजा, अलबत्ता मर्दों को इन पर एक दर्जा हासिल है। ये क्या बात है? अल्लाह ताला कहते हैं कि शादी सिर्फ़ मर्द ही के हकूक़ ले मर्द ही को बेनिफिट देने के लिए नहीं, जिस तरह मर्दों शौहरों के बीवियों पर हकूक़ हैं, इसी तरह बीवियों के भी मर्दों पर हैं। ये सोच लेना कि शादी में सिर्फ मर्द की बात होगी और मर्द ही जो चाहे करे, जो इसके साथ मामला हो, ऐसा नहीं है, दोनों के हकूक़ हैं मारूफ तरीके से। सिर्फ फ़र्क कितना है? वलिर्रिजाली, या फिर देखिए रिजाल का लफ्ज़ शौहर के लिए, हर सूरत में मर्द को औरत पे फर्ज फौकियत नहीं हासिल। शादी की सूरत में शौहर को सिर्फ एक दर्जा ऊपर दिया गया। ये दर्जा क्या है लिखिए इसके नीचे, दर्जा का मतलब क्या है कि शौहर बीवी के को तलाक दे सकता है, बीवी शौहर को तलाक दे नहीं सकती लेकिन मांग सकती है। यहाँ दर्जा क्या है टेक्स्ट के नाते से, हम इसकी वाइड बात बात में करेंगे अगर मौका मिला, लेकिन यहाँ सिर्फ टेक्स्ट को समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि तलाक और इद्दत की चूँकि बात हो रही है, अल्लाह ताला कह रहे हैं जितना औरत का हक है उतना मर्द का भी है, लेकिन मर्द का बस एक ऊपर है। आप कह लीजिए कि जैसे 51 इक्वलन टू 49%, आप पूरे 100 को करें तो मिडल में करें तो 50-50 है ना, तो अल्लाह ताला ने शोहर और बीवी के मामलों में 50-50 नहीं, 51 और 49 का रेशो रखा है। बस इसी पे औरतें नाराज़ हो जाती हैं, हमें तो पहले ही पता था ना इक्वलिटी है ना इस्लाम है, ये तो सारी जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, और इस्लाम तो है ही सिर्फ मर्दों का दीन और दिस एंड दैट। तो आप समझ लीजिए अल्लाह ताला पे बात करते तो करते सोचते हुए भी डरना चाहिए। पहले तो मैं आप सबको यहाँ नसीहत करूँगी कि आज के दौर का जो एक मनपसंद तरीका है ना लोगों का और औरतों का, और वो कह के उनको ज़रा सा लोग एक्सप्लॉइट कर देते हैं और वो बोलना शुरू होती हैं, हाँ जी हमें तो कोई हक ही नहीं दिया अल्लाह ने, हाँ जी मैं औरत जो हूँ तो फिर मेरे साथ तो यही होना था, और हाँ जी नहीं, बिल्कुल अपने जहन की तख्तियों से इस लफ्ज़ को मिटा दें, एग्रेसिव होना छोड़ दें। पहले मानें कि अल्लाह ताला ने औरतों को भी हकूक दिए हैं। अब आप यहाँ सोच लें कि अल्लाह ताला औरत, तो अब यहाँ औरत और मर्द की इक्वलिटी पे मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगी, क्योंकि ये हम करेंगे अल्लाह ने ज़िंदगी दी तो सूरत निसा की आयतों पे अर रिजाल क़वामून अला निसा, और किसी को सुनना है तो वो वहाँ से उन आयतों की तफसीर सुन ले जहाँ अल्लाह ताला ने इस बात को ज़्यादा खोल के पेश किया। लेकिन अमूमन देखिए कि ये हवा कुछ औरतों के जहनों में भरी होती है, और माफ़ कीजिए कि पढ़ी लिखी औरतों के जहनों में ज़्यादा होती है, और उनके तो और ही ज़्यादा होती है जो वेस्टर्न मुल्कों, स्कूलों और कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं और जो बहुत ही ज़्यादा मीडिया को वॉच करते रहते हैं, वो अक्सर ही इस कॉम्प्लेक्स का शिकार होते हैं कि औरत को तो कोई इज़्ज़त ही नहीं दी इस्लाम ने, और देखो देखो औरत अल्लाह की नहीं दे सकती, चलिए हम ले लेते हैं ये हक अल्लाह से मांग के, क्योंकि बच्चों को कुछ चीज़ें माँ प्यार से देती है, कुछ चीज़ें बच्चे ज़िद करके ले लेते हैं ना, लड़के रो के ले लेते हैं कुछ चीज़ें, हम भी कहते हैं नहीं जी अल्लाह ताला हमें तो ये दर्जा भी चाहिए औरत भी तलाक दे सके। ले आए वापस अपनी तरफ बात को, औरत जज्बाती होती है नंबर एक, जल्दबाज होती है। अब औरत को उस मतलब किसी भी औरत है उसको उसकी सास ने सताया, अमूमन घरों में लड़ाइयाँ होती हैं, सास ने इतना सताया कि शौहर शाम को जॉब से आए तो बीवी ने उसको देखते क्या कहना है, मैं तुम्हें तलाक देती हूँ, तुम्हारी माँ ने मुझे सता दिया है। और किसी की बात वो कहते हैं कि अगर औरत के हाथ में तलाक देने का इख्तियार होता ना, हर औरत डिलीवरी बेड पे अपने शौहर को तलाक दे चुकी होती। आप सोचिए कितनी तलाकें होती, तुम भी दो तलाक हम भी देते हैं, डबल से ट्रिपल रेशो ना हो चुका होता है। मर्द में ठीक है गुस्सा ज़्यादा होता है, लेकिन मर्द सोच के काम करता है, तहम्मुल आला होता है। अमूमन देखे मर्दों की बर्दाश्त ज़्यादा होती है, आप इमेजिन करें, मैं खुद औरत आप कहेंगे ये क्या बातें कर रही हैं, तो आप देखिए कि कोई अपने खिलाफ बात तो नहीं करता ना, लेकिन सच बोलना चाहिए। हम औरतें अपने शौहरों से कितनी बातें उनकी उनके घर वालों के खिलाफ करते रहे, अमूमन देखे कुछ औरतें जो मियाँ का बड़ी शिद्दत से इंतज़ार कर रही होती हैं ना शाम को, वो इसलिए होती हैं कि बातें मचल रही हैं जो सास ने ये कहा, नन ने ये कहा, देवर ने ये कर दिया, देवरानी ने ये कर दिया, सब्र से वो सुनता रहता है, साथ खाने के साथ खून के घूंट भरते रहते हैं। और बहुत ही बदकिस्मत औरतें हैं और बड़ी नासमझ हैं कि जो खाना खाते हुए मियाँ को ये कुछ सुनाती हैं, फिर अखीर एक वक्त ऐसा आता है कि मियाँ वही खाने की प्लेट फेंकते तो कहती है देखो जादू कर दिया सास ने, खाना खाने बैठे थे अच्छे भले थे और अब देखो गुस्सा आ गया प्लेट तोड़ के चले गए। कभी भी अपने शौहरों को आप ज़िंदगी में जिस मोड़ पे भी चले जाएं, आप उम्र के शुरू के हिस्से में, आप आखिर में, जहाँ भी, कभी अपने मर्द को एक्सट्रीम रवैयों में चिढ़ ना चढ़ाएं। बहुत भूखा हो तब भी, बहुत नींद आ रही है तब भी, कोई चीज़ वो आपसे चाह रहा है ना, आप कहते हैं पकड़ा गया अब जाएगा किधर, अब जो सुनाना है सुना लो, आप अब सुना लें जो सुनानी है वो बाद में आपको फिर सुनाएगा, याद रखिए। तो लिहाजा अब एक मर्द तो बीवी से कितनी बातें सुन लेता है अपनी घर वालों के ख़िलाफ़, और ज़रा इमेजिन तो करें आपके शौहर आपकी माँ की बुराई करके तो देखें, कहते हैं क्या मतलब है, यानी औरत अपने मैके की बुराई नहीं सुन सकती शौहर के मुँह से, हाँ। तो लिहाजा अल्लाह ने औरत को जहाँ रखा है वो ठीक रखा है, वो जज्बाती होके अगर तलाक़ें देने लग जाएगी तो बनेगा क्या। फिर आप देखिए कि जब शादी होती है ना, तो शादी होती है जिस वक़्त, उस वक़्त मर्द की तरफ से पैगाम आता है, वो हम पढ़ेंगे आगे जाके इंशाल्लाह डिटेल से कि निकाह कैसे शुरू होता है। तो चूँकि निकाह का पैगाम मर्द ने दिया था ना, तो वापस भी वही लेता है, जिसने पहल की थी शादी में वही तलाक में भी पहल कर सकता है, उधर भी औरत ने निकाह को एक्सेप्ट किया था, ठीक है, और इधर भी औरत एक्सेप्ट करे, उधर भी औरत के पास पूरी आज़ादी थी, कह दे नहीं मुझे नहीं करना तुमसे निकाह, ऐन वक्त पे बारात आई भी चली जाए कोई उसके ऊपर पास पूरा इख्तियार है, हमारी इस्तलाह में जैसे कहते हैं घर आई बारात चली जाए वापस, औरत करे एक्सेप्ट ना करे, यहाँ औरत के साथ मामला है। तो बहरहाल वलिर रिजाल अलैहिन्न दरजा, बाकी रह गई बात, आप कहते हैं नहीं जी हमें तो बराबर ही चाहिए था मर्द के होना, बस हम भी मर्द बने दूसरे, आप ज़रा इमेजिन तो करें अल्लाह ताला ने क्या औरत और मर्द को अलग करके उनको मुख्तलिफ लेवल दे के कोई जुल्म किया औरत पे या डिस्क्रिमिनेट किया, नहीं किया, ये ज़रूरत के लिए था, इसके लिए मैं हमेशा जो मिसाल देती हूँ ना, वो चेयर और टेबल की देती हूँ जिस पे आप बैठे हुए हैं इस वक्त। चेयर नीची है, टेबल आपसे ऊपर ना। आप इमेजिन करें कि टेबल मर्द है, ऐसी इस्तलाह के लिए, और चेयर झुकी हुई भी है, नीची भी है, मोस्टली कमज़ोर भी होती है, ये औरत है। चेयर के ये क्या बात है, लो आपने मुझे टेबल से 1 फुट नीचे रख दिया, करें मुझे ऊपर। चले आप जिस चेयर पे बैठे हैं, करें इसको ऊपर, कर कर के आप बिल्कुल इसको, इसकी टॉप और अपने टेबल की टॉप बराबर करें, फिर बैठ के देखें कैसे बैठते हैं। झुकेंगे तो गिर जाएंगे, खाएंगे तो झुक जाएंगे, लिख नहीं सकते, ज़रूरत नहीं पूरी होगी ना। औरत को अल्लाह ताला ने मोल्डिंग बनाया, औरत की, औरत का सारा हुसन ही नज़ाकत में। हम वैसे तो कर्व्स की बड़ी बात करते हैं, बॉडी के फिगर्स को नुमाया करते हैं, औरत की डेलिकेसी को नुमाया करते हैं, वो कमर नापती है, वो गर्दन नापती है, लेकिन जिस लिए अल्लाह ताला ने उसको डेलिकेट बनाया था, जो उसकी खूबसूरती थी, फ्लेक्सिबिलिटी, उस वक्त हम एक मर्द बन जाते हैं। जब आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने जन्नत में भेजना था तो उनके साथ किसको भेजा, हवा को बनाया ना। क्या ये मुमकिन नहीं था कि अल्लाह ताला आदम के साथ एक और मर्द को बना देते, भेज देते? क्यों? अल्लाह को पता था कि मर्द एक सख्त चीज़ है, इसके मिजाज में कुछ और तब्दीली चीज़ें हैं, इसकी इसके रुझानात और हैं, उसके मुकाबले में एक डेलिकेट औरत दे दी। अब आप सोचिए कि अगर मर्द के मुकाबले में एक मर्द ही हो, क्या घर बनेगा वो? आज औरतें मर्द बनना चाहती हैं, माजरत के साथ आज की औरतें आधे से ज़्यादा मर्द बन चुकी हैं, आजमा के देख ले। मर्द कमाते हैं, औरत कहती है मैं भी कमाऊंगी, मर्द कहते हैं मैं, मेरी बात सुनो, वो कहती है मेरी भी सुनो, वो कहती है मेरा अपर हैंड है, वो कहती है मेरा अपर हैंड है, वो दोनों मुकाबला करते हैं। तुम बर्तन धो तो फिर मैं कपड़े धोऊंगी जाके, मैंने धोए थे, अब तुम इस्त्री करो। कुछ इस किस्म का स्टैंडर्ड बन गया ना। तो आप सोचिए कि अगर दो मर्दों की शादी हो जाए, क्या ज़िंदगी है? एक दाढ़ी मूछ वाला, दूसरा भी उसके साथ दाढ़ी मूछ वाला, एक को भी चादर सही नहीं बिछानी आती, दूसरे को भी नहीं आती, एक भी फैला रहा है, दूसरा भी फैला रहा है। आप घर जाएंगी, आपको घर अपना बिखरा हुआ दिखेगा। एक तो ये कि आपका ब्लड प्रेशर हाई हो जाए, आप तो कभी कमरा साफ़ नहीं करते, दूसरे आप खुश हो कि शुक्र है ये नहीं करते साफ, फिर तो मेरे ऊपर कितने नक्स निकालेंगे। तो ज़रूरत के लिए, जैसे एक मिसाल दे देती हूँ बस इस पर, कि जैसे आप देखिए ना, दरख्त है, दरख्त के डिफरेंट पार्ट्स हैं ना, एक रूट्स हैं, वो तो सारी ज़मीन में नरम होती हैं, नीचे जाती हैं, स्टेम ऊपर जाता है। अब अगर आप सोचें कि ये दोनों लड़ने लग जाएं, जड़ के, ये क्या बात है, मैं तो ज़मीन के अंदर ही जा रही हूँ, मेरी तो कोई इज्जत ही नहीं करते, मुझे तो पाँव में डाल दिया, वो निकल के अपनी जगह से बाहर आ जाए, और तना के, ये क्या बात है, सारे दरख्त का बोझ मैं ही अकेला उठाऊँ, मैं नहीं अपनी जगह पर रुक रहा। ये दोनों चीज़ें मिसप्लेस हो जाएं तो दरख्त कायम रहेगा? नहीं कायम रहेगा ना। इसी तरह मर्द और औरत जब अपनी अपनी लोकेशन छोड़ देते हैं ना, तो ये घर का सिस्टम बिगड़ जाता है। और जब से औरत को ज़ुबान मिली है ना अपने हकूक़ लेने के लिए, उसके बाद सिर्फ़ एक चीज़ का इजाफा हुआ है, और वो ब्रोकन होम्स। ना मर्द की फितरत बदलेगी, ना औरत की बदलेगी, वो अकड़ जाती है, टूट जाती है, झुकती नहीं, कोई बात नहीं, घर टूट जाएगा। तो लिहाजा वलिर्रिजाल अलैहिन्न दरजा, अल्लाह ने मर्दों को एक दर्जा दिया, मान लो, एक्सेप्ट कर लो, क्या बुरी बात है? हम कई चीज़ों को मानने में, हम मानने में कि हमारी आंखें देखेंगी, हम कभी नहीं कहते कि आंख कानों आंखों तुम सुनो, कभी किसने कहा कानों तुम बोलो? एक्सेप्ट कर लीजिए, किसी मसले को ख़त्म करने का एक ही तरीका है कि उसको हकीकत समझ लें। क्योंकि जब हम किसी चीज़ को मसला कहते हैं ना, ये मेरे लिए मसला है, तो मसले के लफ्ज़ के साथ हमारी तबीयत में एग्रेशन पैदा होता है, हम चिढ़ते हैं, हमें गुस्सा आता है, झुंझलाहट होती है, फिर उसको पैचअप करने की कोई सलाहियत ही नहीं रहती, क्योंकि दिमाग तो पहले ही ख़राब कर लिया हमने, आग तो दिमाग में पहले ही लग गई। दूसरी सूरत है, आप कहते हैं नहीं, ये इट्स रियलिटी, इट्स ट्रू नाउ, यही होना था, यही चाहिए था, नहीं मैं इसको बदल सकती, एक्सेप्ट कर लीजिए। मसलन आपको एक छोटी सी एग्जांपल इस पे भी दे देती हूँ, हम ये जो वेट उठाते हैं, आपको पता है किस वजह से होता है? मसलन आप कहते हैं ना, ये बस्ता मैंने अपना बैग उठाया, ये बड़ा हैवी है, ये जो हमारा वेट है ना, असल में ज़मीन की ग्रेविटी की वजह से होता है, ज़मीन हर चीज़ को अपनी तरफ खींच रही है। हम इस बैग को उठाते हैं ना ऊपर, तो वो ज़मीन नीचे खींच रही थी, हम ऊपर उठाते, ये उस चीज़ का वेट होता है। आप ऊंची मुकामात पे जाते जाएँ तो चीज़ों का वज़न कम हो जाता है, क्योंकि ग्रेविटी से कम होती है। हर बंदे ने इस रियलिटी को माना हुआ है कि ज़मीन के अंदर 9.8 की ग्रेविटी है। कभी आपने किसी अखबार, किसी आर्टिकल, किसी फोरम, टॉक शो में ये मसला सुना लोगों से, ज़मीन क्यों खींचती अपनी तरफ चीज़ें, इतनी हैवी लगती हैं हमें उठाने के लिए? इसीलिए चांद पे जाके चीज़ों का वज़न नहीं होता, अपना भी नहीं होता, लोग उड़ते हैं, वजह क्या कि वो ग्रेविटी की रेंज से निकल गए। करते क्या हम इसका सदबाब कर लें, हम कुछ जानवरों के ऊपर सामान लाद लेते हैं, कोई व्हील्स इजाद हो गए कि चलो इस पे अपना वजन उठाएं। हमने मसले को हकीकत समझा, हमें उसका हल मिल गया। और अगर हम आज भी रोएं, हाय ज़मीन क्यों खींचती है अपनी तरफ, हाय इतना सामान उठाना पड़ता है, तो आप देखें कि हम शल हो जाएंगे। तो ज़िंदगी में मसलों के हल का एक गोल्डन रूल लिख लीजिए कि मसले को हकीकत समझें। बस लोगों को सांस नहीं पसंद होती, उठते बैठते सास 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 सास, रोते आता है शौहर तब रोते, जाता है तब रोते, माँ से बात करते तब रोते, बहन से बात करते उसकी गिबत करते, सास सास। चलिए उठिए, फिर लें पिस्तौल और उसको मार दें। कर सकते हैं आप, गोली मार दें उसको, मार सकते हैं आप, नहीं मार सकते आप उसको कि वो आपको मार दे। चले आप इससे भी ज़रा और बड़ी जुरत करें, शौहर से कहें कि छोड़ो अपनी माँ को, दो तलाक अपनी माँ को, आप उसको आग में डाल दीजिए माँ शौहर को। आप तो कहते हैं मेरी सास है मेरी बला से, तो आपके शौहर की तो माँ है, क्या करें आप, एक्सेप्ट इट, कबूल कर लें, हाँ यही औरत मेरे नसीब में थी। इसी तरह बाज़ औरतें बहू को बर्दाश्त नहीं करती, उठते बैठते ताने, तू कहाँ से आ गई, तुझे तो बुलाया नहीं, मैंने तो उधर करनी थी, तू किधर मेरे पल्ले पड़ गई, पड़ गई अब कर लीजिए कबूल। यही असूल शौहरों पे ले आए, यही इवन अपने बच्चों पे ले आए। बस औरतों को अपने मर्द बच्चे नहीं पसंद होते, उठते बैठते कंपेयर करती हैं, फलां के देखे फलां के देखे, हाँ भाई यही थे, नहीं बदल सकते। आप एक्सेप्ट कीजिए, वल्लाहु गफूरुन हलीम, अल्लाह ताला हर चीज़ पे फौकियत रखता है, वो आपको माफ़ भी करेगा तहम्मुल भी करता है। और यहाँ देखिए कि अल्लाह की सिफत क्या आई है कि वल्लाहु अज़ीज़ुन हकीम, बहुत गहरा नुक्ता है। यहाँ आज पहली दफ़ा शायद आपकी क्लास में ये बात बताने लगी हूँ कि आयतों के आखिर में जो अल्लाह सुबहान तआला की सिफात आती है ना, जो मुमन हम यूँ ही गुजार देते हैं, हाँ आयत पूरी हो गई आगे चले, वो बड़ी कीमती सिफात होती हैं। आयत का जो टॉपिक और उसके अंदर से जो थीम निकलता है ना, उससे मुतल्लिक अल्लाह ताला की सिफत होती है। मसलन देखिए, अल अज़ीज़, अल्लाह ताला का नाम, गालिब गलबे वाला, और हकीम हिकमत वाला। गालिब कहकर इस आयत में मर्दों को डराया गया कि देखो अब ये ना कहना खुली छुट्टी मिल गई है कि अलैहिन्ना दरजा, हम औरतों पे जो मर्जी रोब डालें, नहीं मैं तुम पे भी गालिब हूँ, अगर इस बेगुनाह बच्ची पे तुम जुल्म करोगे तो मैं फिर तुम्हें भी पकड़ सकता हूँ क्योंकि मैं अज़ीज़ हूँ। और दूसरी बात, अल हकीम में अल्लाह ताला औरतों को तसल्लियाँ दे रहे हैं कि क्यों गुस्सा करती हो कि अलैहिन्ना दरजा, मर्दों को अगर एक दर्जा दिया तो मुझे पता है कि इसमें क्या हिकमत है, तुम्हें अगर तलाक देने की नहीं इजाज़त दी, लेने की दी है, तो मेरी इस काम में हिकमत है। तो लिहाजा यहाँ पे हमारा सबक पूरा हुआ, और अल्लाह ताला से हम ये दुआ करते हैं कि हमें मानने वाला दिल दे दे, हम हर चीज़ को उस तरीके से लें जिस तरह अल्लाह ताला ने हमारे लिए बनाई और पेश की, और हम उसको फिर लेके चलें। अब ये जो आयत में इद्दत का टॉपिक शुरू हुआ है ना, मैंने इसको बिल्कुल हल्का सा करके वाइंड अप किया, क्योंकि आगे जाके इसी सबक की बिल्कुल यानी इसी टॉपिक की आखिरी आयतें जो हैं उसमें इद्दत की मुख्तलिफ किस्मों का तस्करा है, मसलन प्रेग्नेंट औरत की इद्दत क्या है और दूसरों की, तो वहाँ जाके इस पर ज़्यादा बात होगी। अभी सिर्फ जहन साजी है, सिर्फ लफ्ज़ खुरू जो है उसके बारे में अगर एक चीज़ ऐड करना चाहें, इसका मानी होता है जमा करना। ये लफ्ज़ कुरान जो है वो भी इसी से है, करा या खरू से, बहुत सारे उलूम का मजमुआ है कुरान, तो लिहाजा ये इसके अंदर था। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमारी गलतियों की इस्लाह फरमाए। सुबहान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून, वसलामुन अलल मुरसलीन, वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।